आप हैं SBS हिंदी के साथ।
देश में कोरोना का असर कम होने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को संक्रमण के लगभग 1,31,000 नए मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,00,000 से अधिक रही। ज्यो-ज्यो कोरोना के मामलों में कमी आती जा रही है, इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली में मृतकों की असली संख्या को लेकर भाजपा ने राज्य की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को घेरा है।
किस प्रकार से सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती है और किस प्रकार से इन आंकड़ों को छुपाया जाता है और कोई भी अकाउंटेबल नहीं है, इस प्रकार का एक पिक्चर दिल्ली का जो प्रशासन है, दिल्ली की जो सरकार है, वो हम सबके सामने रखने का प्रयास करती है। बंधुगण, आज के इस खबर का मुख्य बिंदु यह है कि 2 महीने, अप्रैल और मई का महीना, यह 2 महीना सर्वाधिक महत्वपूर्ण महीने रहे थे जहां तक कि कोविड के सेकेंड वेव का संबंध है, और इन 2 महीनों में लगभग 34,750 डेथ सर्टिफिकेट्स इश्यू किए गए हैं। दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, इन तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा 34,750 टू बी प्रिसाइज। और आप सोचिए, इतने बड़ी तादाद में डेथ सर्टिफिकेट 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इश्यू करते हैं अप्रैल और मई के महीने में, किंतु जो ऑफिशियल फिगर है, जो सरकारी आंकड़े दिल्ली की सरकार देती है, वो कितना है? वह है 9,916 सर्टिफिकेट।
21,000 मौतों का हिसाब दिल्ली सरकार से मांगते हुए संबित पात्रा कहते हैं,
जो ऑफिशियल कोविड फिगर्स 2 महीने के रहे हैं, वो कुल मिलाकर के 13,201 रहे हैं, और जो डिफरेंस होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा दिए हुए आंकड़ों का और ऑफिशियल फिगर्स का, वो होता है 21,549। आप सोचिए, अनअकाउंटेड डेथ, 21,000 से अधिक ऐसी मृत्यु हुई है दिल्ली शहर के अंदर जो अभी तक अनअकाउंटेड है, जिनके विषय में कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। कहां से 21,000 लोगों की मृत्यु हुई, कैसे 21,000 लोगों की मृत्यु हुई, वो कौन लोग हैं जिनका दिल्ली सरकार नाम भी लेना नहीं चाहती।
दिल्ली सरकार को निशाना बनाए जाने से गुस्साए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। उनका आरोप है कि भाजपा अरविंद केजरीवाल की आलोचना करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती।
मैं सोच रहा था, हो सकता है संबित पात्रा जी बताएंगे कि 36,000 करोड़ का जो सो कॉल्ड वैक्सीन का बजट रखा गया था, उसके बारे में देश को थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि 36,000 करोड़ की वैक्सीन कितने लेके आ रहे हैं। कुछ नहीं बताया, केवल केजरीवाल को गाली गुफ्तार, केजरीवाल को बुरा भला, केजरीवाल को बुरा भला कहना। आजकल ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडमार्क हो गया है।
मनीष सिसोदिया कहते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ने की बजाय बेहतर प्रबंधन पर जोर दे।
मतलब 15 मिनट वो केवल और केवल ये बोलते रहे, केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। देश का इतना बड़ा नेता 15 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा करता है, तो इसका मतलब देश की सत्ता में बैठी हुई पार्टी के पास में कोरोना मैनेजमेंट के लिए ना तो कोई विजन है और ना उनकी क्षमता है, ना उनके पास देश के लिए कोरोना मैनेजमेंट का कोई प्रोग्राम है। मैं सोच रहा था, हो सकता है बोले कि हम अब फाइजर लेके आ रहे हैं। मैंने सोचा हो सकता है बता रहे होंगे कि कैसे कितने दिन में मॉडर्ना उपलब्ध हो जाएगी, मॉडर्ना के कितने ऑर्डर कर दिए हैं, देश के बच्चों को वैक्सीन कितने दिन में लग जाएगी।
ऐसा नहीं कि कोरोना पर सिर्फ राजनीति हो रही है, केंद्र और राज्य सरकारें इससे निपटने के उपायों पर भी काम कर रही हैं। केंद्र सरकार टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए विदेशी टीकों को भारत लाने की कवायद में जुटी हुई है। गुरुवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई, जिसमें वैक्सीन को लेकर भी चर्चा हुई। भारत और अमेरिका के बीच वैक्सीन सहयोग पर सहमति बनी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची इस बारे में कहते हैं,
वी रिमेन एंगेज्ड विद US वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स लाइक फाइजर, मॉडर्ना एंड जॉनसन एज पार्ट ऑफ दिस एफर्ट। We are separately also engaged with the US administration to ensure that necessary components and raw materials for vaccine manufacturing and production in India are readily available and that the supply chains remain open. This issue was taken up most recently during the visit of External Affairs Minister to the United States. It is in our mutual interest to combat the global pandemic by expediting vaccination efforts.
और अब बात भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी की, जो पीएनबी घोटाले में आरोपी है। इसे भारत लाए जाने की कोशिश हो रही है। मेहुल चौकसी इस समय डोमिनिका में अवैध प्रवेश के मामले में अदालती कार्रवाई का सामना कर रहा है। भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण का प्रयास कर रही है। हालांकि मेहुल चौकसी की एंटीगुआ की नागरिकता इसमें आड़े आ सकती है। अरिंदम बागची भारत सरकार के प्रयासों पर कहते हैं,
India remains steadfast in its efforts to ensure that fugitives are brought back to India to face justice. Regarding the specific case of Mehul Choksi, we understand that he is currently in the custody of Dominican authorities and certain legal proceedings are underway. We will continue to make all efforts to ensure that he is brought back to India.
और चलते चलते चर्चा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की, खास तौर पर सीमा पर चल रहे तनाव की। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का कहना है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना आसान नहीं है।
ट्रस्ट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कम बाय एंड इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डेवलप एंड देयर हैव बीन डिकेड्स ऑफ मिसट्रस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड ऑब्वियसली The situation on that score cannot change overnight.
गुरुवार को जनरल नरवणे ने एलओसी से सटे अग्रिम इलाकों का दौरा किया। दोनों देशों के बीच इस समय युद्ध विराम चल रहा है, जिसके 100 दिन कल पूरे हो गए। जनरल नरवणे का कहना है कि इसे आगे भी जारी रखना चाहते हैं, पर जवाबी कार्रवाई के लिए भारतीय सेना तैयार है।
That although the ceasefire is in place, we cannot in any way reduce our levels of alertness and preparedness.
कश्मीर में दो दिन रहने के दौरान सेना अध्यक्ष नरवणे ने एलओसी के साथ साथ कश्मीर घाटी की मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा भी लिया। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।